अब जो है नए नए साथियों से बात करके लाना है। आज के स्टूडियो का मकसद ये है कि गाई बने, उससे बात करके नए साथियों को बढ़ाने की सलाहियत आए। आम मुसलमान को, काफी मुसलमान को सच्चे मुसलमान बनने की दावत है, और उसके साथ साथ ये बोलना है कि हम सच्चे मुसलमान बनने के लिए एक माहौल चाहिए। वो माहौल हम लोग उसको कहते दीन दोस्ती से कहते हैं, माहौल बनाना है, इससे जो है दीन के सलाम साथ ये बात बोलना। तो ये दावत की बात है, दावत की बात को इंशाल्लाह दो किस्तों में करके हम लोग याद करेंगे। इसमें सफा नंबर 12 का खुलासा है, सफा नंबर 12 दावत की बात का खुलासा है, सफा नंबर 12 खुलासे की बात जो है पढ़ते हुए तफसील पढ़ने से रह नहीं होता। एक तरफ खुलासा रहने रखना और बिल्कुल शक होता, फिर जो है उधर तफसील है पीछे, दोनों जाकर सोचने से ध्यान दिया जाता है। कर देंगे वो हम किसी के पास जा रहे हैं तो पहले शॉर्ट में हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो बोलते हैं। हम आपके पास दो फिक्रें लेकर आए, एक अल्लाह से अच्छा ताल्लुक बनाना है, दूसरा मुफ्ती मुक्त करना है, यह पहला। इसकी तो तफसील में कैसा बोला गया है, प्यारे भाई हम आपके पास दो फिक्रें लेकर आए, एक ये कि हम अल्लाह ताला से अपना अच्छा और सच्चा ताल्लुक बनाए तो सच्चे मुसलमान बनते हैं, दूसरी बात यह कि हम सब मुसलमान एक जिस्म की तरह मुतहिद होकर दीन पर चलने और हालात का सामना बनाने के लायक हो। सामने वाले को बोलना है दो फिक्र लेके आए हैं आपके पास। एक फिक्र क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले कलमे वाले हैं, ईमान वाले हैं, तो अभी अल्लाह से सच्चा ताल्लुक नहीं, मजबूत ताल्लुक नहीं, जो पूरी जिंदगी पर असर डाले, जिससे दीन की बरकतें जिंदगी में जाहिर होने लगे, इतना सच्चा ताल्लुक नहीं है। कलमे का ताल्लुक तो है हमारा ना, तो हम इसलिए आए हैं दावत देने के वास्ते कि आप भी हम भी सच्चे मुसलमान बन जाए, प्रैक्टिकल मुसलमान और सच्चे मुसलमान बन जाए। और फिर चाहे दूसरा एक हम सब मुसलमान अब एक जिस्म की तरह से हो जाए, बिखरे बिखरे हैं एक जिस्म की तरह हो जाए, उसके दो फायदे होंगे। हुकूमत के इतिहाद आने से दीन पे चलना भी आसान हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा दीन पे उस वक्त अमल कर सकते हैं जब उम्मत मुत्तहिद हो तो कर सकते हैं। जैसे कई स्कूल खोलना है, मुसलमानों का इतिहाद होगा तो स्कूल खुलेंगे, सूद से बचना है, हर आदमी जाती तब तो बचना चाहे तो नहीं बच सकता, पूरे मुसलमान मुत्तहिद रहे तो बिना सूदी बैंक कायम कर सकते हैं, हिदायत कायम कर सकते हैं। तो ऐसे ही अब जैसे मुस्लिम पसंदा का मसला आ गया है, अब हुकूमत के सामने ताकत के साथ अपना मौका रखना है, तो मुत्तहिद रहेंगे तो रख सकते हैं, वरना शरीयत हमारी पूरी हुकूमत व्यवस्था लगनदाजी करेगी। मुत्तहिद रहेंगे तो हम ताकत से खुद भी दीन पे चल सकते हैं, दूसरे हम हालात का सामना करने के काबिल हैं। इतिहास पैदा हुआ था, आज जो है हर तरफ से उम्मत को घेरा जा रहा है, मुत्तहिद रहेंगे तो हालात का। तो शुरू में जाते ही गया पूरी बात का खुलासा पहले बोल दें कि हम आपके पास दो फिक्रे लेके आए, एक हमारा अपने अल्लाह ताला से सच्चा और पक्का ताल्लुक, अच्छा ताल्लुक हम हो गए, हम सच्चे मुसलमान। दूसरी बात यह कि हम मुसलमान मजबूत एक जिस्म की तरह से, हदीस में कमसल जसद वाहिद है, तो अपन वो याद रखे एक जिस्म की तरह हम मुत्तहिद हो रहे, उससे क्या फायदा होगा, दीन पे चलने में भी आसानी होगी, हालात का सामना करने में भी आसान। ये है पहला पॉइंट, फिर एक बार बोल रहा हूँ ताकि एक महफिल में याद रहा है, सलाम वलाम करके मुलाकात करते खैरियत पूछने जो भाई तो जो शॉर्ट में पहले बोल रहे हैं, दो बातें बोलने के वास्ते आपके पास। पहली बात यह कि अल्लाह के वजह से अब ये क्या है, खाली फ्रेम है बात करने का, आप जब बात करेंगे तो उसमें और तासीर पैदा करेंगे, जिसकी जैसी सलाहियत है तो अल्लाह के वजह से कलमे वाले हैं, ईमान वाले हैं, और आजकल के तो मुसलमान को अच्छा खासा इल्म है दीन का, लेकिन मेरी आपसे मुलाकात करने का मकसद ये है कि हम एक ऐसी मेहनत में लगेंगे ये सच्चे मुसलमान हो, अल्लाह से अच्छा ताल्लुक होता है, सच्चा ताल्लुक हो सच्चे मुसलमान हो, ये दावत है हमारी। दूसरी इत्तेहाद की दावत है कि हम सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह मुत्तहिद हो जाए, फरमाता एक जिस्म। इससे दो फायदे होंगे, सब मिलकर रहने से दीन पे चलने में भी आसानी होगी और फिर हालात का सामना करने में भी आसानी हो जाएगी। अब इसी को सच्चा ताल्लुक बनता कैसा, इंडिया का जो तरीका है कलमे की दावत देते हैं। सूरह अंबिया आए थे इसलिए ताकि इंसानों की जिंदगी में तमाम परेशानियां दूर हो जाए, आदमी के एक एक की अपनी जिंदगी में जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, गुनाह हैं, वो भी खत्म हो जाए और पूरी कौम में भी जो बुरी रस्म रिवाज है, जुल्म है, वो भी खत्म हो जाए, इसके लिए अंबिया आए थे। लेकिन बात कहाँ से शुरू करते थे अंबिया, कलमे की बात करते, पूरे इधर उधर के मसले नहीं बोलते थे अंबिया, क्या बोलते थे कि अल्लाह से दूर बोलते थे, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू बोलते थे। इसलिए जब तक एक अल्लाह का ईमान, एक अल्लाह का यकीन, एक अल्लाह का डर नहीं होता तो आदमी के अपने जाती अखलाक भी नहीं बन सकते, दिखावे के अखलाक रहते और पूरी कौम के मसले भी हल नहीं हो सकते। इस वास्ते अंबिया इधर उधर के साइड के मौजूदात को नहीं लेते थे, डायरेक्ट ये मौजूद लेते थे कि आओ अल्लाह से जुड़ जाओ, वो है अपन की बात वैसे करना है। अब उसको लाए इस्लाम, अपन मुसलमान को समझ जाते हैं, अल्लाह बदल तो है भी मुसलमान समझ रहे, लेकिन इस्लाम का मतलब क्या है, अपने मालिक को पहचानना। कैसे पहचानना, उसकी अजमतों को कितने बड़े हैं, उसकी बड़ाई को अच्छी तरह समझना और अल्लाह की खूबियों को जानना, रहमान है, रहीम है, करीम है, वफ़ार है, सत्तार है, कदरदान है, शकूर है, हलीम है। एक तो उसकी बड़ाई को जानना, ऐसे जाना अल्लाह को मुश्रिक भी बोलता खुदा है बोलते, मगर वो अल्लाह ताला को बहुत मामूली चीज समझता, सही नहीं पहचानता। हम भी आगे अल्लाह की ऐसी पहचान कायम की है कि मालिक को ऐसा पहचानना कि उसकी अजमतों को भी पहचानना और उसकी खूबियों को पहचानना और फिर अल्लाह के हुकूम को पहचानना। अल्लाह का हक ये है कि अल्लाह ही की बात की जाए, ये काफिर मुस्लिम पूरी दुनिया का बनाने वाला अल्लाह का मानते हैं, मतलब पूजा का हक दूसरों को भी देते हैं, हम दूसरों की पूजा करेंगे। तो मुसलमान का इस्लाम का मतलब ये है कि अपने मालिक को पहचाने, ऐसा पहचाने कि उसकी अजमतों को पहचाने, उसकी खूबियों को पहचाने, उसके हुकूम को पहचाने। अब ये पहचानना इतना अच्छा हो कि उसकी वजह से दिलो जान से उससे मोहब्बत करने वाले और फरमा बरदार बन जाए, उसकी खूबियों को याद करके पहचाने इस तरह से कि उससे मोहब्बत करने वाले बन जाए, उसकी अजमत को इसका पहचाने कि उसका फरमा बरदार बन जाए, जब उसकी बड़ाई समझ में आएगी तो फौरन उसकी बात माने। अल्लाह की ऐसी मार्फत जो उसके नतीजे में दो चीजें पैदा होना, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होना, अल्लाह की इताअत पैदा होना। ये पहले क्या कलमे का मतलब समझा, अल्लाह से जुड़ना, कैसा जुड़ना, ऐसा पहचानना कि उसकी अजमतों को भी पहचानना, उसके खूबियों को भी पहचानना, उसके हुकूम को भी पहचानना, पहचान के हम उससे मोहब्बत वाले हो जाए, इताअत वाले हो जाए, ये है इस्लाम का। इस्लाम माने सरेंडर होना, इस तरह अल्लाह से जुड़ना। अब नबियों से अपने काम भी जोड़ो, सारे नबियों की और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही एक दावत थी। आप हम दोनों भी नबियों को मानते ना तो जिंदगी भर तकलीफें उठा उठा के लोगों की इज़ा रसानी को बर्दाश्त करके यही बात पहुंचाते, कि कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह एक है, वो सारी अजमतों वाला, बनाने वाला, चलाने वाला एक ही। कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो और उससे ताल्लुक जोड़ो, एक अल्लाह से जोड़ डालो, तुम कामयाब हो जाओगे। और फिर आप क्या फरमान देते, आप सब ये फरमान देते कि ये कलमा मान लो, पढ़ लो इस कलमे को ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम कल पढ़ लो मतलब अल्लाह से जुड़ जाओगे, अल्लाह से तो तुम अरब के भी मालिक हो जाओगे, अजम भी तुम्हारे माफरत हो जाओगे। इतनी बड़ी वादा करते थे कि कलमा पढ़ने का असर ये होगा, पूरे अरब के तुम मालिक हो जाओगे, ऐसा हो जाओगे और बाकी दुनिया भी तुम्हारे ताबे हो जाएगी। ये है दूसरा पॉइंट, इसमें कि भाई आप आओ, हम सुनो बात, आप लोग पॉइंट का लिंक समझेंगे तो याद रखना बाद में आसान हो जाता है। कोई भी इसको याद करना है तो उसके लिंक्स को जोड़ना, आप करके पहली बात को दूसरी बात को क्या रहा था, पॉइंट क्या है समझना, पिछले पॉइंट से लिंक क्या है। पहले जाते ही पूरी गुफ्तगू का खुलासा बोल दिए कि हम दो बातें लेके आए, एक बात क्या है कि सच्चे मुसलमान बनेंगे, अच्छा ताल्लुक कायम करेंगे, और दूसरी बात यह है कि हम मुक्तदी बन जाएंगे। इसका फायदा यह होगा कि दीन पे चलना भी आसान होगा, हालात का मुकाबला करना भी आसान होगा। आप ये भी गुफ्तगू सुनेंगे ना, इसी में याद हो जाएगा इंशाल्लाह, 60% इसी में याद हो जाएगा, और पूरा एनालिसिस के साथ बोल रहे तो याद हो जाएगा। अब खुलासा बोलने के बाद तफसील में जा रहे हैं कि भाई इस्लाम का मकसद क्या है। आप भी समझते मुसलमान हो, मैं भी समझते मुसलमान हूँ। इस्लाम का मतलब है अल्लाह से सही ताल्लुक कायम होना, यानी बंदा अपने मालिक को ऐसा पहचाने कि उसकी अजमतों को पहचान कर और उसकी पूरी खूबियों को, पूरे सिफात की शक्ल में तारुफ करवाए, हमें नाम बताए, उसकी खूबियों को ऐसा पहचाने आदमी, और उसके हुकूक को, अल्लाह के हुकूक को, मेरे रब का मेरे ऊपर क्या क्या है, उसको इतना पहचाने आदमी कि फिर उसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, शरीर मोहब्बत हो जाए और फरमाबरदारी आए, इसको बोलते हैं इस्लाम। इसका सरेंडर कर अल्लाह को पहचान, मोहब्बत और इताअत के साथ अपने आप को पेश करवाइए। बोलते अब नबी से शुरू होना है कि पूरे नबी यही बोलते, जिन नबियों की हम इज्जत करते हैं, जिस नबी पे हम कलमा, वो यही बात बोलने के लिए सारी दुनिया में घर घर पहुंचते थे। एक बोलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कि ला इलाहा इल्लल्लाह को मान लो तुम कामयाब हो जाओगे। और हुजूर फरमाते थे तमलिकून बिल अरब वो तदीन लकुम बिल अजम, ये कलमे को मामूली नहीं समझो अल्लाह से जुड़ने को, एक अल्लाह से जुड़ने को। इसका नतीजा एक दिन यह आएगा कि पूरे अरब के तुम मालिक हो जाओगे और अजम भी तुम्हारा ताबे हो जाएगा। इतना बड़ा कलमा है देखने में, ये एक अल्लाह को मानना है, इसका असर ये होगा कि तुम अरब के मालिक हो जाओगे और अजम तुम्हारा ताबे हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट हुआ। उसका तीसरा पॉइंट है, ये जो हुजूर बोल रहे थे अरब अजब के मालिक हो जाओगे तो कामयाब खुशी बोल रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह को मान लो तो कामयाब हो जाओगे बोल रहे, तो कैसा कामयाब होंगे, उसका पॉइंट आ गया है। खुशी होगा कि वजह आ गई कि अल्लाह के बन जाने में ही कामयाबी है, ये बात साफ जाहिर है, अल्लाह के बनने में ही कामयाबी है, ये बात साफ जाहिर है। क्यों? अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात और इतनी जबरदस्त बादशाही हमारे सामने, इतना बड़ा सूरज उनके हुक्म पे दौड़ रहा है, सितारों का कितना बड़ा सिस्टम है जो उनके इशारों पे चल रहा है, लाखों मखलूकात को पाल रहे हैं और सबको खिला रहे हैं, तो अल्लाह की जो ताकत है उनको कायनात में नजर आ रही है, जबरदस्त बादशाही, और उसके इल्म और उसकी ताकत और कुदरत का नमूना हमारे सामने है। इस कायनात की शक्ल में उसका इल्म कितना बड़ा है, उसकी कुदरत कितनी बड़ी है, नमूना हमारे सामने ये कायनात की शक्ल में है। इसके अलावा आप मुसलमान ये बात भी जानते हैं कि हमारी जिंदगी के सारे वाकयात के पीछे भी अल्लाह ही का हुक्म है, और जितने भी हालात आते हैं उसके पीछे भी अल्लाह ही का हाथ है, हमारी अपनी पर्सनल है। और पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, कोई कौम ऊपर आ रही है, कोई कौम नीचे जा रही है, बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं और सैलाब आ रहा है, कभी आंधी आ रही है, दुनिया के भी सारे अंगामों के पीछे भी अल्लाह की कुदरत काम कर रही है। ऐसी बड़ी ताकत वाले रब का जब सच्चे दिल से कोई बंदा बन जाएगा तो अब उसके कामयाब होने में क्या शक हो सकता है। एक तो कायनात से उसकी ताकत समझ में आई, दूसरे हमारी जिंदगी भी उसी के कंट्रोल में है, इससे होने वाले वाकत भी पूरे उसी के कंट्रोल में है। जब इतने पावर वाले कि हम फरमाबरदार बन गए, उससे सच्चा ताल्लुक हो गया, तो हमारे कामयाब होने में क्या शक है। इतनी कायनात को पालगा तो हमको नहीं पालता, इतनी ताकत है जब वो हमारे साथ हो जाएगा तो हम फेल हो जाएगा। ये पॉइंट है, बोलो ला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अल्लाह से जुड़ो तो कामयाब हो जाओ की तशरीह है। क्यों क्यों कामयाब होते हैं, उसकी ताकत हम कायनात में भी देख रहे, अपनी जिंदगी में भी उसी की चल रही और सारे दुनिया में भी उसी की चल रही है, इसलिए उसके उससे जुड़ने के बाद कामयाब हो जाता है। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह यहां तक हुआ, उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे कलमे के दूसरे हिस्से बोलना सामने आ रहा माशाल्लाह मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह को मान के हम लोग मुसलमान हुए आप जो हो तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है? हमारे कलमे के दूसरे हिस्से मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब ये है कि हमको दुनिया में भेजने के साथ अगली बात है हमको दुनिया में भेजने के साथ हमारे बनाने वाले ने हमारी कामयाबी का तरीका भी भेजा जैसा जमात में बहुत मिसाल देते ना जैसे कोई मशीन बनाता है तो साथ में मशीन को चलाने की भूख भी छोटी सी देता है कि इस मशीन को एक्स्ट्रा से चलेगी उसने हमको बना के दुनिया में भेजा खाली नहीं भेजा बल्कि उसने कामयाब जिंदगी गुजारने का तरीका भी और कामयाब होने का तरीका भी भेजा है। अब इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है इसी दिन में तफसील में जाए तो मजबूत दलायल से साबित किया जा सकता है कि दीन इस्लाम जीने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है और ये कामयाब जिंदगी गुजारने के सामने वाले को बोलना इस्लाम एक ऐसा दीन हमको मिला हुआ है कि असल में वो जीने का सबसे परफेक्ट तरीका है। अपने पास इतना टाइम नहीं है अगर टाइम अपन लेके बैठ गए तो ऐसी ऐसी किताबें आ गई है मार्केट के अंदर वो जो साबित करती है कि हुजूर का हर तरीका साइंटिफिक है। उसको बोलना ऐसा मैं आप लोगों को नहीं बोलूँ उसको बोलना बोलना इस वक्त अपने पास टाइम नहीं है वरना साइंस से साबित होता कि हर वो काम जो हुजूर की है वो परफेक्ट है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के मतलब के हम आए क्या अल्लाह हमको अकेला नहीं भेजे हैं तो जीने का तरीका जो भेजे हैं वो लाने वाले हैं मोहम्मद रसूल। वो तरीका कैसा है एकदम परफेक्ट है कोई भी काम करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वैसे हम करके बताया भैया और अभी वक्त नहीं है वरना मैं साइंसी दलाइल देता जो किताबों में सब कुछ दिए कि दीन का हर हिस्सा ऐसा है कि जो बेहतरीन तरीका है कामयाब तरीका एक ये बता दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ के हम आए हैं तो खाली नहीं आए जीने का तरीका भी भेजा गया है वो लाने वाले हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का होगा। इस दीन पर चलने और इंसानों को इसकी तरफ बुलाने का बदला अब फायदा क्या है दीन पर चलने का सामने वाले को हम क्या है दीनी जिंदगी गुजारो बोलना चाहे तो दीनी जिंदगी का फायदा बता रहे इस दीन पर चलने और इंसानों को इसकी तरफ बुलाने का बदला इस दुनिया की कामयाबी को है अभी बोले ना कि दुनिया की बेहतरीन जिंदगी गुजारने का तरीका यह है इस दुनिया की कामयाबी के साथ आखिरत की इंतहाई आदमी कामयाबी मिलने वाली इस दिन में चलने हम देखिए भाई दीन की बात अपन जब भी करते रहे वहां पर अशर नशर की बात ही करना है इधर उधर की बेकार बातें तो करना है नबी जैसा काम तो उसे करना है सामने वाले को आखिरत से डराना है आखिरत की फिक्र दिलाना है तो उसको बोलना है दुनिया की कामयाबी के साथ आखिरत की इंतहाई अजीम कामयाबी भी मिलेगी इस दीन पे चलने। आखिरत का बदला इतना अजीम है कि दुनिया की सारी चीजें हुकूमत और सल्तनत और लुत्फ लज्जत और आराइश और आसाइश के सारे सामान सब उसके आखिर है आखिर में जाकर के जो जन्नत में मिलने वाली जन्नत मिलने वाली वो इतनी बड़ी चीज है कि दुनिया में हमको हुकूमत भी मिल जाए तो कम है हर तरह की लज्जत मिल जाए आराइश मिल जाए रेबाइश मिल जाए तो कम है उसके सामने बेकार और मामूली है। ऐसी नेमतों वाली जन्नतें मिलेंगी जिनको न किसी आंख ने कभी देखा न किसी कान ने कभी सुना न किसी दिल में उनका ख्याल और तसव्वुर कभी आया ये है फायदा। अब नहीं मानेंगे तो क्या मुश्किल है वो है और इस दीन के जरिए ही आग के उस दर्दनाक अजाब से हमें नजात मिल सकती है जिसका ईंधन इंसान खतरा नबियों का हमेशा तरीका क्या है एक तरफ खुशखबरी देते थे एक तरफ डरा देते तो खुशखबरी ये है हमने सामने वाले मुसलमान को बोलना खुशखबरी ये है कि बेहतरीन जन्नतें मिलने वाली जिनको किसी आंख ने देखा नहीं ऐसी नेमतें जिसको किसी कान ने सुना नहीं जो तस्वीर में नहीं आ सकती ऐसी अच्छी अच्छी चीजें जन्नतों में ये तो मिलेगा करीबा ये बदलाव नहीं मानेंगे दीन को तो क्या होगा आग में जाएंगे दर्दनाक फिर सजा होगी ऐसी आग है जो पत्थरों से जलती है इंसानों को खाके जलती है तो डराने का अमल तो सभी का हमको ये वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब जो है बता रहे मुसलमान की शान क्या है इनके सामने वाला कलमे वाला तो मुसलमान की शान ये है कि जब इतने बड़े अल्लाह को मान चुके हैं तो उस अल्लाह से डरते रहना
میں بزی 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 ان کے مصروفیات کا بہانہ کر کے اللہ کو بھی بلانا وہ پڑھنا.
کائنات میں انسان غور کرے کہ اللہ کی طاقت سے ڈرا ہے دوست. کائنات میں انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بڑی اور زبردست طاقت نظر آتی ہے اس کا تقاضا ہے کہ مسلمان اللہ کی پکڑ سے, اللہ کے حساب سے, اس کے غضب سے, اس کے ڈر سے ہمیشہ ڈرتا ہے. دیکھو بھائی اللہ کی جتنی بھی طاقت ہے تم سامنے نظر آ رہی. اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے, آدمی پکڑ سے غضب سے ڈرتا رہے, عذاب سے ڈرتا رہے, اور دنیا کی فکروں اور لذتوں میں ڈوب نہ جائے اور دنیا کی رنگینیوں سے دھوکا نہ کھائے. کیوں نہ دینی ماحول میں نہیں آ رہا, آپ کی دینی دوستی کے حلقے میں کیوں نہیں آ رہا کوئی بھی, آپ اس کو دینی کی دوستی کے حلقے میں لانا چاہ رہے ہیں کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے نہیں آ رہا کہ دنیا کی رنگینی اس کی چھائی تھی, خواہشات کی لذتیں چھائی تھی, اس میں چوٹ کرنا ہے. اللہ کی طاقت کو یاد رکھو, اللہ کے عذاب سے ڈرو, اور ڈر کے رنگینیوں میں مت رہو, دھوکے میں مت رہو, آ جاؤ ایسے ماحول میں جہاں دین سیکھا جاتا ہے. بس یہاں تک جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے. اس کے بعد سے جو ٹرننگ ہے وہ ہم لوگ ایک دینی ماحول بنائے ہیں, تو دینی ماحول میں رہنے سے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرمائے ہیں کہ تم دین پہ چلنے کے لیے دوستیاں بناؤ, ایک ماحول بناؤ. وہ بات آگے آ گئی. ابھی فی الحال آپ لوگ کیونکہ زیادہ لمبا ہو جائے گا تو یاد رکھنا مشکل ہے, کتنے ہی پوائنٹس ابھی آپ تو بچے. لیکن دین کی گفتگو کرنے کا یہی طریقہ ہے. سب کھانا کھا کے جو نیند کے جھونکے میں آ رہے رات کا بھی نیند ہوتی, مگر یہ فریم ہے بیسک, یہ وہی انداز ہے جو پورے نبیوں کا رہا. دوزخ سے ڈرانا, عذاب سے ڈرانا, جنت کی خوشخبری دینا, اللہ کی طاقت سمجھانا, اور دین میں کامیابی ہے سمجھانا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ اس وقت تو جماعتوں میں جا جا کے سب کا اچھا پکا ہے یہ سبق. بس یہ خالی عبادت ذرا دیکھنا ہے بولنا ہے. یہ سبق کیا ہے؟ کلمے کی دعوت. یہ تو ماشاء اللہ ہم ایک صدی سے دیکھ رہے کلمے میں سب سنے دعوت کی, کلمے کی دعوت ہے. دین میں ہی کامیابی ہے اور سب کچھ کرنے میں والی ذات اللہ کی ہے. وہی بات اس میں ہے. یہ بات ابھی آپ لوگ پوائنٹ دوہرا کے ایک دوسرے کو سنائیے. چلو آج کی بات کا پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ ابھی اس وقت کی بات کا پہلے بھائی ہم آپ کے پاس دو باتیں میرے ساتھ بولیے یاد ہو جائے گا. دو باتیں, ایک یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہے سچے مسلمان بنیں گے بھائی سچے بنیں گے, اور دوسرے کہ بہت بکھرے ہوئے تھے, بہت حالات خراب ہے. ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم متحد ہو جائیں, جسم کی طرح سے ہو جائیں. اتحاد ہو جائے گا تو دین پہ چلنا بھی آسان کرے گا, حالات کا سامنا کرنا بھی آسان کرے گا. اب کلمے کی دعوت میں آ جاؤ. بھائی مسلمان ہے وہ کیا اپنے کو بول رہے ہیں؟ اسلام کا مطلب کیا؟ اسلام کا مطلب ہے اپنے پیدا کرنے والے مالک کو. اچھا غور سے بولنا ہے پھر آپ لوگ, ایک دوسرا پہلے آپ بولنا ہے بولنے کے بعد اپنے مالک کو ایسا پہچانا, اس کی عظمتوں کو پہچانا, اس کی خوبیوں کو پہچانا اور اس کے حقوق کو پہچانا, ایسا پہچاننا کہ ہم کو اس سے شدید محبت بھی ہو جائے اور پھر ہمارے اندر اس کی اطاعت بھی آ جائے. ایسا پہچان کے سرنڈر ہونے کا نام ہے مسلمان. ویسے ہے کیا اپن؟ ویسے اللہ کی عظمت کا دھیان ہے, اللہ کے حقوق کا دھیان ہے کہ ہم سرنڈر کر دیے محبت سے؟ بس یہی دعوت ہم تازہ کرنے کے لیے. اور یہ پورے نبی ایسے یہی فکر لے کے نبی چلتے تھے. نبی بولتے تھے کہ اللہ سے جڑ جاؤ. سامنے والے کو بہت سارے پرابلم رہتے تھے, اس کی بیوی بیمار رہتی تھی, اس کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ رہتا تھا, کتنے کی مگر نبی آ کے اس کو ڈسکس نہیں کرتے تھے. نبی جس میں بھی عرب میں کام کرے, جس سے بھی جا کے ملے, اس کے ہزار مسئلے رہتے تھے. نبی اس کو ڈسکس اس کو ٹچ نہیں کرتے تھے, اس لیے جو جانتے تھے کہ اکثر اللہ سے جڑے گا تو سب مسئلے حل ہو جائیں. ہمارے نبیوں کا طریقہ تھا, آپ بھی ہم مانتے ہم بھی مانتے, پورے نبیوں کا اور ہمارے پیارے نبی کا طریقہ کیا تھا, کیا کام کیے جب اللہ ان کو نبی بنائے؟ تو یہی بولتے تھے, ہر ایک کے پاس جا کے گھر گھر جا کے بولتے تھے بولو لا الہ الا اللہ خوش بولو, کہو اللہ ایک ہی ہے, دنیا کو چلانے والا ایک ہی ہے, اس سے جڑے گے تو کامیابی. تو کیوں اگر ایک اللہ سے جڑ جاؤ گے تو کامیابی؟ بلکہ حضور اور پھیلا کے بولتے تھے ہم نکون بھی خلیل عرب, ایک اللہ کو ماننا معمولی چیز نہیں, صحیح جڑنا. اگر اللہ کو صحیح پہچان کے صحیح جڑے, اس کے فرما بردار بن گئے, معمولی چیز نہیں, اس سے تم پورے عرب کے مالک ہو جاؤ گے.
اور عدم بھی تمہارے ہیں، دنیا میں بھی غلبہ ہو جائے گا. حضور بتائے یہ کلمے میں وہ تاثیر. اب جو ہے تفلیح کو سمجھانا ہے، دو پوائنٹ ہو گئے یہاں تک، ایک خلاصہ ہوا ایک پوائنٹ ہوا. اس پر دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ کیوں اللہ کو ماننے پہ ہی کامیاب ہوتے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ تم ہی دعویٰ کر رہے اللہ کو مانے تو کامیاب ہوتے، تو اس کی دلیل دے رہے. ارے میاں دیکھو، ہمارے سامنے اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، اس میں اللہ کی قدرت ہمارے سامنے آ رہی ہے، اللہ کی طاقت ہمارے سامنے آ رہی ہے، اللہ کی انرجی ہمارے سامنے آ رہی ہے، اللہ کا نالج ہمارے سامنے آ رہا ہے. اتنی بڑی کائنات، لاکھوں اربوں مخلوقات کو پال رہے وہ ہے اللہ، جن کی طاقت ہماری آنکھوں کے سامنے. پھر آپ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہونے والا ایک ایک واقعہ اس کے پیچھے اللہ ہی کا ہاتھ ہے. اور آپ اور ہم اقرار کرتے ہیں، دونوں بھی مسلمان ہیں، کہ دنیا میں بھی جتنے بھی قصے ہو رہے، کوئی حکومت آ رہی ہے، کوئی جا رہی ہے، کوئی سیلاب آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، کوئی قوم اوپر اٹھ رہی ہے، یہ سب کے پیچھے بھی اللہ ہی کا ہاتھ ہے. جب اللہ ایسے بڑے طاقت والے ہیں کہ کائنات میں بھی ان کی طاقت دکھ رہی ہے، اپنی زندگی میں ان کی طاقت دکھ رہی ہے، واقعات میں ان کی طاقت دکھ رہی ہے، اتنی بڑی طاقت والے اللہ کا اگر تم سچے فرما بردار بندے بن جاؤ گے، اس سے صحیح لنک ہو جائے گا، تو پھر ایسے آدمی کے فیل ہونے کے چانس کامیاب نہیں ہوگا. اتنی بڑی طاقت والے اللہ کے ساتھ اگر ہو گئے، ان کے فرما بردار بن گئے، سچا تعلق بند نہیں ہوتا، تو نہیں کامیاب ہوتا ضرور. یہ جو ہے جو ہے کفلی ہوتی دلیل ہم بیان کر دیں. تیسرا پوائنٹ ہو گیا. اس کا چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کا ہے کہ بھائی دیکھو، آپ ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ کے ہی مسلمان ہیں، تو ہم کیا بول رہے ہیں محمد رسول اللہ کے بارے میں؟ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو جو پیدا کرنے والی ہستی ہے، جو ہماری مشین بنایا، وہ دنیا میں ہم کو بھیجتے ہوئے بغیر گائیڈنس کے بغیر نہیں بھیجی، مشین چلنا بچا. ہم کو دنیا میں بھیجنے والے نے یہ انسان اچھی زندگی کیسے گزار سکتا ہے، یہ مشین اچھی کب چلیں گی، یہ زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ کہ یہ زندگی میں کامیاب ہو جائے، آدمی فیل نہ ہو جائے، وہ بھی بتا. پیدا تو کرتے لیکن آنکھ تو دیا ہے، راستہ دیا ہے بدلا، آنکھ بھی دیا، زندگی دیا ہے تو چلنے کا، علم بھی دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجتے ہوئے زندگی جو دی ہے، تو زندگی گزارنے کا، اس کو کامیاب کرنے کا طریقہ بھی بھیجا. وہی طریقے کو لانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم اکیلے دنیا میں نہیں آئے، جینے کا طریقہ بھی لے جائیں، اور وہ طریقہ لائے کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. تیسرا اور کیا ہے؟ اچھا، اسی کامیابی جو ہے نا، ہماری یہ جو طریقہ لے کے آئے ہیں، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. کہ یہ بولنا کہ بھائی اس وقت موقع نہیں ہے، ورنہ سائنٹیفک دلائل سے یہ ثابت ہم کر سکتے ہیں کہ حضور کی جو بھی سنت ہے اسی میں کامیابی. حضور ایسا طریقہ سکھائے ہیں کہ جو کسی بھی کام کو کرنے کا سب سے آسان پرفیکٹ جو طریقہ ہو سکتا ہے وہی حضور سکھائے. تو یہ دین کیا ہے اصل میں؟ زندگی گزارنے کی سائنس ہے. اب یہ تو دنیا کا فائدہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں، دین پہ چلنا اصل لازم سمجھا دیتے ہیں. آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ آپ آؤ، ہم دینداری کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، اس کو بولنا چاہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں، اور بول رہے تھے دین کی زندگی گزاریں گے تو کامیابی پکی ہے. اس لیے کہ پیدا کرنے والا ساتھ میں مشین چلانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اسی میں کامیابی ہے. اب اس کے بعد جو ہے آخرت کی بشیر اور نذیر دیتے، آخرت کے اعتبار سے فائدہ بتاتا ہے کہ اس دنیا کا تو نفع ہے ہی نہیں ہم کو دیندار بننے میں، دینی ماحول میں جینے میں، اس دنیا کا تو ہم کو فائدہ ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا جو نفع ہے وہ اصل ہے. اس دنیا کے مقابلے میں آخرت جو کامیاب ہونے والی ہے، ہمیشہ کی جو جنت ملنے والی ہے، وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں اگر حکومت بھی مل جائے، دنیا میں ان کی دولت بھی مل جائے، تو اس کے سامنے اکثر کے پل کے برابر ہونا ہے. اصل ہم کو آخرت میں کامیابی جو ہے وہ بہت زبردست اس کا بدلہ ملنے والا ہے. ایسی ایسی جنتیں ملنے والی ہیں جس میں نعمتیں، اتنی زبردست نعمتیں ہیں جن کو نہ کبھی کسی کان نے، یہ یاد رکھنا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے دل میں خیال آیا، اتنی اچھی اچھی نعمتیں جنتوں میں ہیں. اور اگر اس طریقے پہ نہیں چلیں گے، دینی زندگی نہیں گزاریں گے، تو پھر دوزخ ہے. ایسی دردناک، ایسی آگ ہے اس کی جو جس کو اٹھا کے لیتی ہے، پتھروں کو اٹھا کے لیتی ہے جہنم کی آگ، اس میں جانا پڑے گا دردناک عذاب. ایک آخرت کی جنت کی دولت کی بات کر دینا، اس کے بعد آپ ہی غصے کو ختم کرتے ہوئے اس کو اور ڈرانا ہے کہ کائنات پہ پھر کائنات کی طرف آ جائے، پھر ڈرانے کی بات کر. وہ آخرت تو چھپی ہوئی چیز ہے، یہ سامنے کی چیز ہوگی کہ کائنات میں انسان غور کرے تو زبردست طاقت سامنے آ رہی ہوگی. اب جس زمین میں بیٹھے ہوئے اس کے اندر پوری آگ بھری ہوئی، اطراف جو سیارے پورے آگ سے بھرے ہوئے، تو زبردست طاقت اللہ کی ہمارے سامنے آ رہی ہے. جب اتنی بھی طاقت والے اللہ کو ہم دیکھ رہے کائنات میں، تو ایک غور و فکر کا تقاضا ہے کہ مسلمان ویسے اللہ سے ڈرے، اس کی پکڑ سے ڈرے، اس کے عذاب سے ڈرے، اور ڈر کے دنیا کی لذتوں میں نہ کھو جائے، دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جائے. آج ہم کو دیندار ہونے میں کیا چیز رکاوٹ پیش آ رہی ہے، ہمارے سامنے لذتیں ہیں، یہ خواہش یہ خواہش یہ خواہش، اس کے چکر میں اللہ یاد دینا، اللہ کی طاقت یاد دینا، عذاب یاد دینا. لیکن سمجھداری کا تقاضا ہے، اتنی بڑی طاقت اللہ کے سامنے ہے تو مجھے اور آپ کو خواہشوں میں ڈوبنا نہیں چاہیے، رنگینوں میں ڈوبنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے. اب اسی کے لیے ہم آئے ہیں، ہم لوگ ایک ماحول بنا ہے دینداری کا، اس میں آؤ آگے ہی بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات آپ کو یہ بیسک فریم ہے، سننے میں بہت آسان دکھا ہوں، اگر بات کرنے جاتے ہیں نا اردو کے کیا بول جاتے ہیں. یہ بولو آپ لوگ بات کرتے ہیں تو بولنا سیکھے ہو، ساتھ دیکھنے میں آسان دکھ رہا، اگر بولو پھر مجھے لا کے سنا تو معلوم ہوتا. چلیے اب آپ لوگ یہ پوائنٹ یاد کیجیے.
دعوتی گفتگو میں جیسے نبیوں کی سنت ہوئے پہلے کلمے کی دعوت دینا ہمارا کام ہے، جو وہی سب سے مؤثر طریقہ ہے، اس لیے سارے نبی ہوئے اختیار کیے، اس لیے ہم صحیح ڈھنگ سے اللہ کی طرف دنیا کی دعوت، دین میں بھی کامیابی اور رسول کے طریقے کے کلمے کی دعوت دینا. اور پھر ہوتا ہے کہ کائنات کا غور کرو، اتنی بڑی طاقت ہے اللہ کی آنکھوں کے سامنے، کائنات ہے ایسے اللہ سے بے فکر رہ کر نظروں میں ڈوب جانا عقل مند نہیں ہے، اس کے بھلا دیتی. اب آدمی سمجھنا آ جائے ہو بھائی اپنی زندگی کو بدلنا ضروری ہے، تو ان کے سامنے یہ بولنا ہے کہ زندگی بدلنے کے واسطے ماحول چاہیے دوست، میرا آدمی چاہتا بہت کچھ میں کروں گا. اگر یہ سب اصل الفاظ ہی ہیں، چکر سمجھ کے آپ الفاظ وقت کے ضرورت آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، اگر گفتگو کس طرح سے چل رہی ہے اگر ذہن میں صاف رہے تو آدمی جو ہے بات آپ ان کو ہلا دیے کہ اللہ سے ڈرو اور دینی زندگی گزارو. اب اس وقت کی گفتگو ہے آگے کا جو ہوا ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں دنیا کی دلچسپیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، نہیں کھوئیں گے، آخرت کی تیاری کریں گے، ارادہ ہوگا، لیکن ارادہ ہونے کے باوجود پھر آدمی بھول جائے گا. تو اس اچھے ارادے پہ اسی وقت جم سکتا ہے جب اس کا تو دینی دوستوں کا ماحول ہو اور اچھی باتیں بار بار اس کو یاد دلانے والا ایک ماحول اس کو ملے، تو بار بار اس کو اچھا کی طرف پش کرتے رہے، تنہا رہ کر آپ نے دین پہ چلنا چاہے تو کیونکہ حالات خلاف ہے، اس واسطے مشکل ہو جاتا ہے، اکیلا رہتے ہوئے دین پہ چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر سچے دل سے محبت کرنے والے ہمارے دوست مخلص جن کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، ہمارے سچے دوست ہیں اور پھر وہ دین داری کے بارے میں پرجوش بھی ہیں، ایسے اگر دوست جو ہم کو دین پہ چلانے میں جوش رکھتے ہیں اور ہم سے خلوص رکھتے ہیں، ہماری بات یہ ہے کہ لوگوں کے نام میں ہماری توہین نہیں کرتے، دین کی دعوت دینے کے نام پہ ہمارے کو گلی نہیں کرتے، ہماری عزت احترام کے ساتھ ہم کو بار بار دین کی طرف خوش کرتے ہیں، ایسے اگر ساتھیوں پر ساتھی اگر ہوں تو پھر آدمی کے لیے دین پہ جمنا آسان ہو جاتا ہے، احترام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. بلکہ حضور کی حدیث کی طرف اشارہ کرنا ہے، دین میں مٹھاس کھانی شروع ہوتی ہے، ایسا دوستوں کا حلقہ بن گیا جن کی دوستی دین کے واسطے ہے، اور وہ مل کے جاتے نماز پڑھتے، مل کے جاتے کوئی دینی شخصیت سے ملتے، تو وہ دینی کاموں میں مزہ آنا چاہتا ہے، دین کی حلاوت ملنی شروع ہوتی ہے جب آدمی دین کے نام کسی سے دوستی کرتا ہے. تو حدیث شریف میں کہ صلاح سے منقول نصیب وجہ دینا حلاوت کرنا،
तीन चीजें अगर किसी के अंदर है तो उसको ईमान की मिठास मिलेगी। मिठास इसमें से एक है कि सिर्फ अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत हो जाए तो ऐसे आदमी को दीन की मिठास, ईमान की मिठास मिलेगी। ये क्या लिखा हुआ है दुनिया की आप किताब में ग्रहण ले सकते हैं। दुनिया की दिलचस्पियों में खो जाने से और आखिरत की तैयारी को भूल जाने से बचने के लिए इंसान को दीनी दोस्तों का मिलना जरूरी है और दीनी बातों की याद दहानी का मिलना जरूरी है और दावत का माहौल मिलना जरूरी है। कोई बुला रहा हो मुसलमान ऐसा माहौल मिलना जरूरी है। तन्हा रहकर दीन पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अकेला चलूंगा भी कोई फोन कार को नहीं चल पाए। मुखलिस और पुरजोश दीनी दोस्त अगर हमारे साथ हो तो दीन पर चलना और शैतान से बचना आसान हो जाता है और दीन की मिठास महसूस होने लगती है। यहाँ तक की बात जो बोले बोले कि आप इसमें कह सकते हैं आप दीनदार बनना चाहते हैं, आखिरत की तैयारी करना चाहते हैं, हर मुसलमान चाहता कि मैं अच्छा बनूं, हर आदमी यही चाहता मैं बुरा बनूं, मैं गंदा बनूं, मैं दोजाती बनूं, कोई मुसलमान नहीं चाहता। उसके बावजूद जिंदगी में बुराइयां ही बुराइयां रहती है, अब तो वो चेंज नहीं कर सकता। तो बोल रहा कि भाई असल में चेंज करने का उसको दोस्त चाहिए, हल्का चाहिए, हर बार दीन की तरफ कुछ करने वाला है, हल्का चाहिए। वो दोस्त का देना बहुत मोहब्बत वाले खुलूस वाले पुरजोश साथी रहना हमारे ढीले ढीले तो हम आपस में दोस्ती के हल्कों के जरिए एक दूसरे के इज्जत का माहौल इसलिए बनाना चाहते हैं कि पुरजोश दोस्त दीन की तरफ बुलाए तो ही आदमी का दिल दीन पे चलने को चाहता। एक आदमी जो पुरजोश दोस्त की कभी ऐसा मिला वो आदमी आके नसीहत करता है तो गुस्सा आता है, बोल रहा है जो साथी हमारे दुख दर्द में हिस्सा लेता बहुत खुलूस वाला है, बोला चला जाता वक्त का नमाज सुनते जल्द हो जाता अच्छा लगता है उसका बोलने। जो साथी कहते रहना फीके फीके नहीं रहना, पुरजोश साथी रहे वो दीन की तरफ बुलाए तब चलना आसान है। और दीन की दो बातें, दीन पे जमना आसान होता है, शैतान से बचना आसान होता है और तीसरी बात है दीन के अंदर जो मिठास आनी शुरू होती है। यहाँ तक तो टर्निंग पॉइंट है, उसको बता रहे थे एक माहौल था। अब यहाँ से हदीसें सुना रहे दीन दोस्ती करनी, इसलिए कि हमको हर चीज को या तो कुरान पेश करके साबित करना है तो हदीसें पेश करके साबित करना है कि ये चीज दीन में चाही गई। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी दोस्ती का जबरदस्त फायदा बताया और इसका बहुत ज्यादा सवाब भी बताया, फायदा भी बताया हुजूर ने, सवाब भी बताया। अब यहाँ से जो है वो आयतें हदीस शुरू हुई। पहली है आयत अल्लाह ताला का इरशाद है कूनु मा सादिकीन, यानी सच्चों के साथ रहो, अकेले अकेले मत रहो, तन्हा न चल सकेंगे मोहब्बत की राह में, मैं जा रहा हूँ आप मेरे साथ आइए, सच्चों के साथ चलो। तो अल्लाह ताला फरमाए कूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। और उसका दूसरी आयत है वल मुमिनून वल मुमिनात बाबुन औलिया और बाद, मोमिन मर्द आपस में और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त और दीन में एक दूसरे के मददगार होते हैं और ऐसे ही मुसलमानों पर अल्लाह रहमत फरमाएंगे। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह। तो यहाँ अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, मोमिनों को जुदा जुदा नहीं रहना चाहिए, मोमिन औरतों को आपस में दोस्त बन के रहना, औलिया उबास मोमिन औरतों को भी आपस में एक दूसरे का दोस्त बन के करना चाहे, या गुरु नबिल मारूफ वही नहुन अनिल मुनकर वही यकीन सलाह वही तून सरकार वही एक दूसरे को नमाज की तलकीन, नेकियों की तलकीन, बुराई से रोकना, दोस्ती इस काम के लिए करते हैं। तो अल्लाह बोल रहे हैं कि ईमान वाले मर्द और औरतें दोस्ती रखते हैं और दोस्ती में एक दूसरे को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। उसके बाद आगे क्या फरमाना है, अल्लाह बुलाई का सैर हम अल्लाह, ऐसे ही मोमिनों को अल्लाह की रहमत होगी, ये दोस्त बनते हैं नेकी के दोस्त बनकर ऐसों पर ही अल्लाह की रहमत होगी। तो एक दो आयतें पर पढ़ दिए दोस्ती की तारीफ में, ईमान वाले दोस्तों के साथ रहो एक आयत पढ़ दिए और दूसरी आयत है ईमान वाले मर्द और औरतें एक दूसरे के दोस्त होते हैं, औलिया होली की जमा होली होते दोस्त, दो आयतें हम दोस्ती की तारीफ में पढ़ दिए। उसके बाद हदीस है, हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की रजा के लिए आपस में मोहब्बत करने वालों को क़यामत में वो मुकाम मिलेगा कि अम्बिया और शुहदा उन पर रश करेंगे। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। हदीस तो बहुत लंबी है, आप दीनी रुश्द की किताब में पूरी हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन कुछ लोगों का अल्लाह के पास ऐसा मुकाम और मर्तबा होगा कि वो उनके चेहरे नूरानी होंगे और उनके बैठकें भी नूरानी होंगी, उनकी सवारियां भी नूरानी होंगी, अर्श के साए के नीचे बैठे होंगे। जब पूरे हश्र के मैदान में सब परेशान होंगे, इन लोगों के चेहरे पे कोई परेशानी नहीं होगी, सुकून होंगे, ना कोई गम होगा, ना कोई डर होगा, सुकून होगा उनके ऊपर, चेहरे से खून फूट रहा होगा। उनकी हालत देखकर लोग पूछेंगे ये कौन नबी है, इतना ज्यादा अल्लाह ताला इज्जत दे रहे हैं। तो दुआ मिलेगा कि ये नबी नहीं है, ये नबी है ना शहीद है, ये दुनिया में दीनी दोस्ती रखने वाले लोग हैं, आपस में अल्लाह के लिए उन्होंने दोस्ती की, इस वजह से अल्लाह ये इज्जत दी। तो पूरी हदीस ऐसी है, एक आप यहाँ मुख्तसर याद करने के लिए मुख्तसर किया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की रजा के लिए आपस में मोहब्बत करने वालों को क़यामत में वो मुकाम मिलेगा कि अम्बिया और शुहदा उन पर रश करेंगे। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत। तो दो आयतें होंगे ये हदीस, और फिर और एक हदीस आपने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा उनसे मोहब्बत करना वाजिब हो गया जो मेरी खातिर आपस में मोहब्बत करते हैं, मेरी खातिर आपस में मुलाकात करते हैं और मेरी खातिर आपस में दोस्ती करते हैं। वजबत मोहब्बती लिलमुतहाबीन फिया वलमुतजाविलीन फिया वलमुतजालिसीन फिया वलमुतबादिलीन फिया, जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठते हैं, एक दूसरे पे खर्च करते हैं, मेरी मोहब्बत और कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर ऐसों से मोहब्बत करना मेरे ऊपर वाजिब है, मैं भी जरूर उनसे मोहब्बत करूंगा। वो आपने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा उनसे मोहब्बत करना वाजिब होगा जो मेरी खातिर आपस में मोहब्बत करते हैं, मुलाकात करते हैं, दोस्ती करते हैं। मुस्नद अहमद और तबरानी की रिवायत है। ये चौथे नंबर पे हदीस होगी, और फिर पांचवे नंबर पे आपने फरमाया जमात बनकर रहना, मिलजुल के ग्रुप बना के रहना, खुद पर लाजिम है। एक फर्द के साथ शैतान लगा रहता है, कोई भी अकेला अकेला दिएगा तो शैतान फिर उसको निवाला बना लेगा, हटका देगा उसको। ये तिर्मिज़ी शरीफ हदीस है, अलैकुम बिल जमा, तुम पर जमात के साथ रहना लाजिम है। ये पांच पॉइंट में से एक दूसरे पॉइंट में पांच बातें हैं, दो आयतें हैं, तीन हदीस हैं। पहली आयत क्या है, जब एक उम्मीद होते हुए आप देखें, पहली आयत है तुम आसाद बन सकते हो। दूसरी आयत क्या है, वन मोमिन और मोमिना के बाद मोमिन मर्द आपस में दोस्त होते हैं, अल्लाह करते मोमिन और के आपस में दोस्त होते हैं, और ये दोस्ती क्या है, दीन की तरकीब की होती है, इन बातों की तरकीब की होती है, इन पर ही अल्लाह की रहमत होगी। संस्कृत हदीस है, पहली हदीस कौन सी है, अहमद के दिन कुछ लोगों को अल्लाह के पास ऐसा मुकाम और मर्तबा होगा कि अंबिया और शहदा भी उस पर रश करेंगे, हालांकि वो नबी और शहीद नहीं होंगे, वो दीनी दोस्ती हुई होगी। उसका क्या हदीस क्या है, मेरी मोहब्बत उनके लिए वाजिब हो गई जो आपस में मेरे लिए मोहब्बत करते हैं और मेरे लिए मुलाकात करते हैं और मेरे लिए दोस्ती करते हैं। और आखिरी हदीस क्या है, जमात के साथ जुड़े रहो, इसलिए कि शैतान अकेले इंसान के साथ लगा रहता है, चिपक जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है आज की पुस्तक में, भाई सामने वाले बोले भाई देखो ईमान वाले, हर ईमान वाला कहता मैं बदलूंगा, मैं अच्छा बनूंगा, मैं नेक बनूंगा, लेकिन ये बड़ी सच्चाई है कि आदमी अकेला तनहा रहते हुए नेक नहीं बन सकता, नेक में नहीं जम सकता, उसको एक माहौल चाहिए, ऐसे दोस्त होना चाहिए जो उसको बड़ी मोहब्बत से दीन की तरफ बुलाने वाले हों, बुराई से रोकने वाले हों, पुरजोर दीनी दोस्त होना पड़ता है। दोस्ती में फिकी नहीं है ना, पक्का दोस्ती होना, और ऐसे दोस्त जब उसको दीन की तरफ बुलाने वाले रहेंगे, दावत का माहौल रहेगा, तभी आदमी दीन पर चल सकता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, अल्लाह के नबी बोल रहे हैं, कुरान बोल रहा है, हदीस बोल रही है, तो आए थे तीन हदीसें सुनाना, ठीक है।
उसके बाद क्या है, अब यहाँ दो का पॉइंट खत्म हो गया,
अब मौजूदा हालात में भी इसके हाथ की जरूरत है उनके बता रहे, इसलिए हमारे दीदी दोस्ती का जो तहरीक है, हमारी मेहनत है, इसमें उम्मत को जोड़ना चाह रहे हैं, पूरी उम्मत को मुतहिद करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इत्तेहाद की बात बोल रहे हैं।
इसके अलावा ये बात भी आपसे अर्ज करना है कि सारी दुनिया में और खुद हमारे अपने मुल्क में इस वक्त उम्मत को मुश्किल हालात का सामना करना है, तो थोड़ा आप हालात की पूरी तस्वीर कीजिए, फिरका परस्तों के क्या अहवाल चल रहे हैं, किस तरह यहाँ वहाँ मुसलमान को पकड़ के मारा जा रहा है, किस तरह आरएसएस की मेहनतें चल रही है, हर तरह से मुसलमानों को घेर लिया गया है, उनके ख्याल में तो बड़े बड़े मंसूबे हैं कत्ले आम के, वो लोग तो डेट्स भी फिक्स कर रहे हैं कि थोड़े दिन में हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसे खतरनाक हालात में हम उम्मत की फिक्र करना जरूरी है। मैं मेरे बच्चे, मैं मेरा कारोबार इसी में रहेंगे, हालात अचानक बिगड़ जाएंगे तो सब कुछ हाथ से छिन जाएगा, ऐसे हालात में हमारी उम्मत कैसे बचे, ये फिक्र करना मुसलमान के ऊपर लाजिम है। एक सदी से मेहनत कर रहे हैं वो लोग, करके गहरेला माहौल बना दिया हमारे पास, आज करोड़ों की तादाद में ऐसे इस मुल्क में लोग हैं जो मुसलमानों से नफरत करने वाले तैयार हो गए, मुझे नहीं देते क्यों, 100 साल की मेहनत है, ऐसे हालात में उम्मत की फिक्र करना लाजिम है। और हुजूर क्या फरमाए हैं, जो मुसलमानों की फिक्र न करे वो मुसलमान नहीं करे, जो मुसलमानों की फिक्र न करे वो हमें से नहीं है बोले। तो मौजूदा हालात में अब क्या करना है, हुजूर क्या कह रहे थे, ऐसे खतरनाक हालात आए तो हुजूर भी उम्मत को मुतहिद करके रखे, तो मौजूदा हालात में भी उम्मत दीन बचना है और मिल्लत बचना है तो इत्तेहाद की जरूरत है मुसलमानों में। हुजूर भी ऐसे मुश्किल हालात में मुतहिद ही किए थे, हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके पर अमल करते हम लोग क्या कर रहे हैं कि दीनी दोस्ती के नाम पे छोटे छोटे हम लोग 10-15 आदमी थे एक एक हल्का बना के, उसमें हुजूर जो सिखाए थे इत्तेहाद के पॉइंट्स उसके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपस में खलूस मोहब्बत हमदर्दी एक दूसरे का ख्याल रखना, तो ये इत्तेहाद को कायम करने की हम ग्रास लेवल से नीचे से कोशिश कर रहे हैं कि खाली इत्तेहाद की बातें ना हो बल्कि वाकईतन प्रैक्टिकली इत्तेहाद हो, तो हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं छोटे छोटे ग्रुप बना के उसमें मश कर रहे हैं, हदीसों की मश कर रहे हैं। और ये भी क्या है हुजूर से साबित है, ऐसे ग्रुप बनाना भी छोटे छोटे भी हुजूर से। अब हम लोग क्या कर रहे हैं दीनी दोस्ती के हल्के बना के उससे अपने ईद में भी इजाफा कर रहे हैं, अमल में भी इजाफा कर रहे हैं, खुलूस मोहब्बत हमदर्दी ताउन और इस्लाम उम्मत और भाईचारे की मश भी कर रहे हैं, और फिर आगे जाकर साथ ही मिलजुल कर उम्मत के इतिहास की मजबूती की भी फिक्र कर रहे हैं, खिदमत के काम कर रहे हैं, तो थोड़े खिदमत के काम सुना रहे हैं, जिला उनके इलाका है वहां पर तकरीबन 2-2.5 साल से जो है एक एक घर पे 1-1 हजार का किट दे रहे थे, सिर्फ ये महल्ले में भी दे रहे हैं, और गरीबों का सर्वे करके उनकी खिदमत की जा रही है, और हिंदुओं के अंदर से जहर खत्म होने के वास्ते हमारे साथी दीनी दोस्ती वाले जाके कायम इंसानियत के कामों में हिस्सा ले रहे हैं, उनके अंदर मिलकर कैंप लगाना, उनके मुख्य तस्वीर करना, उनसे जाके मुलाकातें करना, ऐसे कुछ साथी हमारे आईआईटी में भी काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं आपस में भी खुलूस की मश कर रहे हैं और उसके साथ साथ मुसलमानों को भी मजबूत करने की बात चला रहे हैं, दहन को खत्म करने की बात भी चला रहे हैं। आज हम लोग मुट्ठी में रहे, अगर कल हजारों हो गए तो ज्यादा काम कर सकेंगे हम उम्मत को जोड़ने का। अब आप हमें उम्मीद दिला रहे हैं कि दीनी दोस्तों के हल्कों के जरिए मुसलमानों में आपसी ताकतवर ताल्लुकात, आपस में भाई भाई होने के जज्बात और एहसास और पूरी उम्मत के दुख दर्द को अपना दर्द समझने की सिफत उम्मत में पैदा की जा रही है, जो मौजूदा हालात का जरूरी तकाजा है। तो अभी क्या बोले थे हम थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर देखिए किताब में नहीं, थोड़ी देर पहले क्या बोले थे कि भाई दीनदार हर कोई बनना चाहता नहीं बनना चाहता, मगर बगैर माहौल के नहीं बन सकता, हर आदमी के साथ कुछ दीनी दोस्त है ना पुरजोश मोहब्बत वाले जो उसको दीन की तरफ बुलाते रहे बेदीनी से बचाते रहे, ऐसा माहौल दावत का मिले तभी आदमी दीन में चल सकता, शैतान से बच सकता, हालात के फितनों से बच सकता, एक बोलो दिन
उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोले कि हुदूद, हुदूद खुद दीन दोस्ती की बातें अल्लाह के नबी खुद बताए दीन दोस्ती करने का तरीका, हुदूद खुद बना के गए। तो कुरान में इतनी दो आयतें पढ़ना है इतनी नदी से, तो दोस्ती की तरफ बात होगी। अब मौजूदा हालात की रोशनी में बोल रहे हैं कि भाई एक और एक बात भी आपसे अर्ज करना है कि सारी दुनिया में भी मुसलमानों के खिलाफ जो है यहूद और नसारा प्लानिंग करके हर तरफ से मुसलमानों को घेर के कमजोर कर रहे हैं, और ये हमारे अपने हिंदुस्तान के अंदर भी फिरका परस्त लोग बहुत ताकतवर हुए हैं। 100 साल से मेहनत करते करते वो लोग अब हर तरफ से मुसलमानों को घेरे में घेर गए। अब उनकी चाहत ये है, उनकी प्लानिंग ये है कि हमारा पूरा दीन ईमान तहजीब सब खत्म कर दें, बल्कि हमारे जान से ही खत्म कर दें। ऐसे हालात में उम्मत की फिक्र करना जरूरी है। और आप भी अपने बच्चों में बिजी, अपनी नौकरी में बिजी, मैं भी अपने बच्चों में बिजी, तो फिर क्या होगा इस उम्मत का? तो मौजूदा हालात का तकाजा ये है कि हम हुजूर क्या करें देखें। तो हुजूर क्या करें थे, उम्मत को मुत्तहिद किए थे, जिसम की तरह मुत्तहिद कर दिए। तो मुत्तहिद करने से उनमें बड़ी ताकत आ गई थी फितनों से लड़ने की। तो आज भी जरूरत मुसलमानों को मुत्तहिद करने की, मगर इतिहास जुबानी नहीं आना, हम तो मैं बोले अंदर से खुद अपने अपने कामों में मौजूद है, ऐसा इतिहास काम नहीं आता। हुजूर ने इतिहास कायम किए थे तो सहाबा के दरमियान हुजूर दोस्ती के हलचल कायम करके हुजूर भी अंदर से खुलूस मोहब्बत ईसार का माहौल बनाए। तो हम लोग भी दीनी दोस्ती को एक तरकीब हम लोग बनाए हुए हैं, उसके तहत हम लोग 10-10 आदमी के 12-12 आदमी के हल्के बनाए हैं, वादा का हम लोग उसका अहद किए हैं कि हम लोग दीनी दोस्त बनकर दीन पे अमल करेंगे, मोहब्बत की तालीमात पे अमल करेंगे। चुनाचे हम लोग ऐसे हल्के बनाकर अपने इल्म में इजाफा कर रहे हैं, इल्म में इजाफा कर रहे हैं, अमल में इजाफा कर रहे हैं, आपस के खुलूस में इजाफा कर रहे हैं, भाईचारे की मश्क कर रहे हैं, आपसी जुलूस की मश्क कर रहे हैं। दूसरे हम लोग क्या कर रहे हैं, जाके उम्मत को मजबूत करने की भी कोशिश कर रहे हैं, गरीबों के अंदर हम काम कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों के अंदर काम कर रहे हैं, मौजूदा हालात का जो जहर है उसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मत की खिदमत को मखदूस शेखों को काम कर रहे हैं। अब ये जो काम ऐसा है, हम लोगों को ऐसा यकीन हो रहा है, समझ में आ रहा है, ये काम ऐसा है, देखने में सीधा साधा है, अगर इसका रिवाज पड़ जाएगा, ये दीनी दोस्ती की जो तरकीब हम लोग चला रहे हैं, इसका अगर रिवाज पड़ जाएगा तो फिर मुसलमानों में ताकतवर ताल्लुकात बन सकते हैं, आपस में भाई भाई होने के जज्बात हम बना सकते हैं मुसलमानों, और एक दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझने का विधान हम इस सिफत उम्मत में पैदा कर सकते हैं। जैसे हमारे साथियों में पैदा हुआ खिदमत का जज्बा पैदा होगा, एक दूसरे के अच्छे बुरे में शरीक होने का जज्बा पैदा होगा, वैसे ये काम फैलेगा तो पूरी उम्मत में फैलेगा। इस वास्ते आपसे पूरी आजीवी के साथ दरखास्त है, इस काम में आप हमारा साथ दीजिए, जिसमें दीन की बात है, अपना ईमान बनाने की बात है, अपना कैरेक्टर बनाने की बात है, और मौजूदा हालात का इलाज भी इस काम कितना फैलेंगे मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ देने वाले हो जाएंगे। ये काम होना इस जमाने में बहुत जरूरी है। अल्लाह बुला के जवाब देना, इसलिए आप भी हमारे साथ शरीक हो जाइए, एक बार जगह हमारे पास होते चलते हैं, आप तशरीफ लाएंगे यहाँ दीनी दोस्ती की जो अपनी मुलाकात दरमियान ही रहती है उसमें बुला सकते। ये पॉइंट है, इसको जो है आप लोग याद करके दोहराना। फिर एक मतलब लास्ट में बोलने के बाद आप लोग याद करना शुरू कीजिए, ये दुनिया की दिलचस्पियों से नहीं मैं मत खुला हुई हम बोल रहे हैं, मगर दुनिया की रंगीनी में दिलचस्पियों में न घूमने के वास्ते और जो है दीन पे चलने के वास्ते इंसान को माहौल चाहिए, आपसी लड़ाई के बाद माहौल चाहिए, दावत का माहौल, दीनी दोस्तों का माहौल चाहिए। तन्हा रहकर आदमी दीन पर नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है। मुखलिस मुजरूर दोस्त होंगे तो दीन पर जमना भी आसान है, शैतान से बचना भी आसान है। और ये तरकीब करके खुद हुजूर ने बात बताए हैं, कुरान और हदीस में इसका जिक्र है। कुरान में ही अल्लाह ताला फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्का तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला वा अंतुम मुस्लिमून। मोमिन मर्द और एक दूसरे के दोस्त बन के रहते हैं, उन पर ही अल्लाह का रहम होगा। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन तुम लोगों को अल्लाह के पास वो मुकाम मर्तबा इज्जत हासिल होगी कि जो नबियों को शहीदों को लोग देख के समझेंगे कि वो नबी है या शहीद है, मगर वो नबी और शहीद नहीं होंगे, वो लोग होंगे जो अल्लाह के वास्ते आपस में मोहब्बत की है, दोस्ती की। फिर हुजूर ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी मोहब्बत वाजिब है उनसे आँख खोल के सुनो, मान लो आँख बंद करके सुनने की नींद है, आँख बंद करके सुनो। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत वाजिब है, मैं जरूर उनसे मोहब्बत करूंगा जो मेरे साथ ही आपस में मुलाकात करते हैं, दोस्तियां करते हैं, मेरी मोहब्बत उनसे। और अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया कि जमात बनकर रहो, अकेले अकेले मत रहो, अकेले के साथ शैतान लगा रहता है, तो दोस्तियां करना जरूरी है। और एक पहलू भी आपके सामने रखना है, वो ये है कि मौजूदा जो हालात है, सारी दुनिया में भी मुसलमानों के ऊपर हालात आए हुए हैं, इस मुल्क में भी हालात आए हुए हैं, एक सदी से मेहनत कर रहे फिरका परस्त रहर भूलने की, आज करोड़ों इंसानों के रहने में मुसलमानों की नफरत भूल दी है, उनके बड़े बड़े मंसूबे मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसे में मुझे और आपको उम्मत के लिए फिक्र करना है, सिर्फ मैं मेरे बच्चे मैं मेरी नौकर हम इसमें लगे रहेंगे, हालात बिगड़ जाएंगे तो फिर अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे। हुजूर ने फरमाया जो मुसलमानों की फिक्र ना करे वो मुसलमानों में से नहीं, तो मुसलमान होने के लिए जरूरी है मुसलमानों की फिक्र। अब फिक्र करना हो तो क्या करना, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गौर करें तो मालूम होता है कि हुजूर ऐसे मुश्किल हालात में मुकाबला करने के लिए उम्मत को मुतहिद किए, आज जरूरत है कि फिर से उम्मत को मुतहिद किया जाए। और ये इतिहास खाली ऊपरी ऊपरी बातों का ना हो, सबका दिल मिल जाए, मिल के बैठने वाले, मिल के खाने वाले, मिल के एक दूसरे के काम करने वाले, हमदर्दी नीचे से लाई जाए। चुनाव हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्योंकि दोस्ती की हुदूद की थाली में हालत का भी तकाजा है, हम लोग गए दरअसल 10-15 आदमी, 10 कम ज्यादा आदमी का ग्रुप बना लिए हैं और दोस्ती का अहद किए हैं, जैसे हुदूद भी इस तरह बनाए थे मदीना जाने से पहले, और फिर हम लोग आपस में खुलूस की मशक कर रहे हैं, इसमें हम इल्म भी सीख रहे हैं, अपना अमल भी सीख रहे हैं, अच्छे अच्छे अमल अपना कैरेक्टर भी डेवलप कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम आपस में खुलूस की भी मशक कर रहे हैं। हम लोग एक बार तो मिलते हैं, बीच में भी मिलते हैं दोस्ती के वास्ते, एक दूसरे के घरों पर मिलते हैं, एक दूसरे के अहबार से माल वापस होती है, एक दूसरे के कामों में हिस्सा लेने का माहौल है हमारे साथियों का, तो आपसी खुलूस प्रैक्टिकली हमारे अंदर पैदा होता है। उसके साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि ये 10-10 के ग्रुप मिल के हम कुछ मुसलमानों को कोई महिला लेके उनके खिदमत भी कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों के अंदर जाके हम उनके गैर निकालने वास्ते पैनल हैं, मुख्तलिफ शोबों के काम भी कर रहे हैं उम्मत के। तो इस तरह एक ऐसा काम है जिसमें इल्म भी है, अमल भी है, अपने कैरेक्टर बनने का भी है, और आखिरत की कामयाबी भी है, और उम्मत को जोड़ने का भी ये काम है। इस वास्ते आप और आपसे गुजार लीजिए कि आप ज्यादा तवज्जो दीजिए, बीवी बच्चे किसको नहीं है, घर किसको नहीं है, हम इस तरह से लग के चलेंगे तो आखिरत भी हमारी बन जाएगी और मौजूदा हालात का इलाज भी हो जाएगा।